نحمده نصلي على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انشاءاللہ آج ہم سورۃ الغاشیہ کو پڑھیں گے. سورۃ الغاشیہ مکی سورت ہے، اس کی 26 آیات، ایک رکوع، جبکہ الفاظ اور کلمات کی تعداد 92 ہے، 92، اور حروف ہیں 381. پہلی ہی آیت کے لفظ الغاشیہ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورت جمعہ کے ساتھ سورت غاشیہ بھی پڑھتے تھے، اور ہمیں سورت غاشیہ کے بارے میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ سورت غاشیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں پڑھتے تھے. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. پہلی 7 آیتیں جو ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو جگایا ہے اور بتایا ہے کہ تم پر ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے، اور اس کا نام الغاشیہ ہے، جو کہ قیامت ہے. اور یہی اس سورت کا موضوع بھی ہے، ایک طرف توحید اور دوسری طرف آخرت. اور اہل مکہ ان دو باتوں کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب وہ حادثہ پیش آئے گا، وہ بڑی مصیبت پیش آئے گی، اور وہ قیامت کی آفت جب آئے گی اور ساری دنیا پر چھا جائے گی تو ہوگا کیا؟ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر بھی پہنچی ہے؟ هل اتاك حدیث الغاشیہ، کیا تجھے خبر ہے؟ اور الغاشیہ، الغاشیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ غاشیہ جو ہے یہ غشی سے ہے، اور اس کے معنی ہیں ڈھانک لینے والی، چھا جانے والی. تو یہاں پہ یہ قیامت کی صفت کے طور پر آیا ہے، کیونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے کہ کوئی دوسری زندگی ہوگی جس میں حساب کتاب ہوگا. تو اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس کا انکار کرتے ہو اور تم بھول گئے اس بات کو کہ وہ تو ایک بڑا حادثہ ہوگا جو ہر طرف چھا جائے گا، پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہو جائے گا. جیسے غشی جب انسان پر آتی ہے تو انسان کو ہوش نہیں رہتی، اب کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو جب وہ واقعہ پیش آئے گا تو ہر طرف جو ہے وہ لوگوں کو اپنی ہوش حواس جو ہے وہ لوگ کھو بیٹھیں گے. تو یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ قیامت کی ہولناکی تمام مخلوق کو، تمام کائنات کو ڈھانپ لے گی، بڑا ہی سخت وقت ہوگا. جیسے دنیا میں بڑی مصیبت کے وقت ہم کہتے ہیں ہوش ہی نہیں تھا، کوئی کہتا نا یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، ایسا کر لیتے، یہ کیوں نہیں کر لیا، تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہوش نہیں تھا. تو یہاں پہ فرمایا، اب یہاں پہ دو گروپس کا ذکر ہے. پہلا گروپ جو ہے یہ آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 7 تک ہے. اس میں فرمایا کہ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے. آیت نمبر 2 میں کیا ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن خوف زدہ ہوں گے. تو خاشعہ جھکے ہوئے کو کہتے ہیں، اداس کے لیے بھی آتا ہے، پست کے معنی میں بھی آتا ہے. تو کچھ چہرے جو ہیں اس دن ذلیل ہوں گے، ذلیل کے معنی بھی دیتا ہے. جیسے جب ہم نماز میں ہوتے ہیں، خشوع خضوع کا لفظ کے نماز میں وہ خشوع اختیار کرتے ہیں، یہی روٹ ہے، तो नमाज में झुक जाना, बिल्कुल जो है वो नमाज में इंसान की कैफियत जो है वो अल्लाह के सामने आजजी की होती है, पस्त होती है, इंसान अपने आप को जलील कर लेता है। तो यहाँ पे इसी मानी में है कि कुछ रोज उस दिन, कुछ चेहरे उस दिन जो है वो खौफ सदा होंगे, झुके हुए होंगे, पस्त होंगे, आजिज होंगे, उदास होंगे। वो क्यों उदास होंगे? आमिला नासिबा, थके जाते होंगे। आमिल अमल करने वाले, नासिब और कलफ जो है ये थके हारे के लिए आता है। जैसे आमिल ऐसे बंदे को कहते हैं जो मेहनत कर करके निढाल हो गया था, दुनिया में बड़ी मेहनत की उन्होंने, बड़े अमल किए। और नासिब जो है इसके मानी क्या, थके हुए। तो अब असल में ये आमिलतुन नासिबा, इस सिलसिले में मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की रवायत है, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु जब मुल्क शाम में तशरीफ ले गए तो एक ईसाई राहिब के आपके पास आया जो बूढ़ा हो चुका था और अपने मजहब में जो ईसाइयत में जो है रहबानियत उसने अख्तियार की हुई थी, तो खूब रियाजत मेहनत और मुजाहिदा उसमें लगा हुआ था। चेहरा उसका बिगड़ा हुआ था, लिबास उसका खराब था, पुराना हो चुका था, हैयत उसकी पूरी बदली हुई थी लिबास की, चेहरे की। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने जब उसको देखा तो आप रो पड़े। लोगों ने आपके रोने की वजह पूछी कि आप क्यों रो रहे हैं। फरमाया कि मुझे इस बूढ़े जो बूढ़ा शख्स है राहिब, इसके हाल पर बड़ा रहम आया कि इस बेचारे ने एक बड़े मकसद के लिए मेहनत और जानफशानी इख्तियार की और मगर वो अल्लाह की रजा को पा ना सका। इस पर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु ने यह आयत पढ़ी, वजूह हुई यौमाइज़िन ख़ाशिया आमिलतुन नासिबा। इसका क्या मतलब है कि आप रो पड़े कि अल्लाह की रजा को पा ना सका? इसलिए कि रहबानियत इस्लाम में नहीं है। उसने अल्लाह की रजा को पाने के लिए दीन में चेंज कर लिया, जो चीजें जायज थी उसको छोड़ दिया। तो आज भी हमें मुसलमानों में बहुत से अब ग्रुप पैदा हो चुके हैं और कुछ लोगों ने अपने शॉर्टकट इख्तियार कर लिए हैं और दीन की जो असल है उसको छोड़ दिया है। कुछ लोग कहते हैं हदीस की जरूरत नहीं है, कुछ लोग कहते हैं सुन्नत की अब जरूरत नहीं है। तो असल में जो अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल ठहरेंगे वो होंगे जो कुरान के मुताबिक हों और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हों। और बाकी जो तमाम लोग हैं उल्मा, उनको आमिलतुन नासिबा में कहते हैं कि उन्होंने अमल तो किया होगा लेकिन जो है वो सही तरीके से नहीं किया होगा। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तरीका है, सुन्नत है, अंदाज है, उनका ये अंदाज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि सारी जिंदगी मुसलसल अमल करना और मेहनत से थक हार जाना और उसके बाद फिर इंसान का हाल ये हो कि जो भी दुनिया में उसने अमल किया था तो अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते ये ऐलान करें कि तुम्हारा कोई अमल नहीं है क्योंकि अल्लाह के यहाँ तुम्हारी कोई मेहनत काबिले कबूल नहीं है। तो एक तरफ आमिला, एक तरफ नासिबा, एक तरफ खाशिया, ये पूरी उस कैफियत को जाहिर करते हैं जो वहां पे जो है वो उन कुफार पे, मुशरिकीन पे, मुनाफिकीन पे जो है वो छाई भी होगी कि इबादत और बातिल तरीकों में जो उन्होंने मेहनत और रियाजत की थी, जैसे हिंदुओं में जोगी हैं, नसारा में ईसाई हैं, वो राहिब हैं, और इसी तरह मुसलमानों के अंदर अब बहुत से ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं कि जिसमें जैसे कुछ मतलब बहुत सी अब चेंजेस कर दी। जैसे अभी मैंने उस दिन आपको एक मिसाल दी थी कि अब इस्तखारे का तरीका अल्लाह के नबी की सुन्नत से हमें पता जो चलता है कि दो रकत नफल पढ़कर फिर इस्तखारे की जो दुआ रसूल अल्लाह ने सिखाई है वो हमें आम मिलती है, क्योंकि सहाबा कहते हैं कि आप इस्तखारे की तालीम ऐसे देते थे जैसे कि आप नमाज में तशहुद सिखाते थे, यानी इस तरह से आप इस्तखारे की तालीम देते थे। और ये जो हदीस है इस्तखारे की, ये बुखारी की हदीस है। हजरत जाबिर रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रसूलुल्लाह युअल्लिमुनल इस्तखारा फिल उमूरी कमा युअल्लिमुनस सूरा मिनल कुरान। तो आप हमें इस्तखारे की तालीम बिल्कुल ऐसे देते थे जैसे कुरान की सूरते सिखाते थे। यकूलु इज़ा हुम्मा अहदुकुम बिल अम्री, कि जब तुम में से किसी को कोई अहम मामला पेश आ जाए फल यरका रकातैन, तो वो दो रकत जो है वो नमाज पढ़े, मिन गैरिल फरीदा यानी नफल जो फर्ज नहीं है, सुम्मा लियकुल, फिर वो पूरी दुआ जो है मिलती है। इसी तरह हमें ये भी मिलता है कि जैसे आप नमाज में तशहुद सिखाते थे तो इसी तरह आप इस्तखारे की तालीम देते थे। तो लेकिन अब हमारे यहाँ इस्तखारा कुरान खोल के किया जाता है कि वो कुरान खोल लिया तो जो आयत है ना वो मुझे आ जाती है, मैं उसको उंगली फेरते फेरते आंखें बंद करके, तो मैं हम फिर उस पे अमल कर लेते हैं, तो ये तो तरीका नहीं है। कहते हैं हम कुरान से ही लेते हैं। या मैंने बताया था उस दिन, मैंने वो पाकिस्तान से किसी का फोन था तो बताने लगी खातून के वो तस्बीह के दाने जो हैं थोड़े से साइड पे रख लेते हैं, फिर दो दो करके जोड़ी जोड़ी दानों तरफ करते जाते हैं। अगर एक बच गया तो वो चीज ठीक नहीं है, दो जोड़े दो दाने बच गए तो वो ठीक है। तो बच्ची के स्कूल का दाखिला है तो ये इस्तखारा उन्होंने किया और उस पर उन्होंने फैसला किया। मैंने कहा आपकी मत मारी गई, आपकी अकल मारी गई, आप पढ़े लिखे हो के मेरे अपने रिश्तेदारों में थे और आप लोग ये करें। मेरा तो ऐसा, मैंने ये हर हर थोड़े, और फिर एक एक जगह पता चला $50 लेकर वो इस्तखारा करते हैं, आपको बता देते हैं। और फिर ये कि इस्तखारा ऐसी चीज नहीं है जो दूसरों से करवाया जाए, इस्तखारा खुद करना चाहिए। लड़की का रिश्ता है, लड़की इस्तखारा करे, उसके वालदैन करें। हाँ ये है कि मेरी आपकी कोई बहन भाई है, रिश्तेदार है, तो आपके आप भी इस्तखारा करके मशवरा दें हमें अपना, आप भी अल्लाह से मशवरा करके फिर हमें राय दें। अब ये कोई ऐसा तरीका नहीं है कि बस लोग हमने रखे हुए जो हमारा हमारा तो फलां कोई जो है ना वो इस्तखारा करके हमें बताता है, तो ऐसा नहीं है। खाना हम खुद खाते हैं, कपड़े हम खुद पहनते हैं, बाकी नींद हम खुद लेते हैं, और इस्तखारा वो अल्लाह ताला कहीं दूर नहीं है, अल्लाह हमारे बहुत करीब है, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करता है। हर चीज का तरीका है, हर चीज का तरीका है, लेकिन दीन जो है वो बहुत अब हमने तब्दील कर लिया है। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि तमाम वो इबादतें और तमाम मेहनतें जिनमें शिर्क था, जिसमें तरीके को तब्दील कर लिया गया था, जिसमें अपनी मर्जी को शामिल कर लिया गया था, उनकी अल्लाह के नजदीक कोई अहमियत नहीं है, उसमें कोई अजर और सवाब नहीं मिलेगा। तो अब उन लोगों के चेहरे दुनिया में भी आमिला और नासिबा रहे, और आखिरत में भी अब उन पर कैफियत जो है जुल्लत जिल्लत और रुसवाई की है, ख्वाशिया है। तो ये बात जो है ये बड़ी ही सख्त बात है। फिर फरमाया तसला नारन हामिया, शदीद आग में जुलस रहे होंगे। तसला जो है स्वाद लाम या, वो दाखिल होंगे नारन आग में, और आग जो है कहते ही जलती हुई चीज को है। और वो हम पिछली दफा हदीस पढ़ चुके हैं कि दुनिया की आग से आखिरत की आग 69 दर्जे ज्यादा है, लेकिन फिर हामिया की सिफत यहाँ पे बताई गई। हामिया जो है इंतहाई गर्म को कहते हैं, जैसे किसी चीज को जब गर्म किया जाता है तो उसके लिए हमा का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बुखार में कोई तप रहा हो ना तब भी बुखार के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो वो शदीद आग में झुलस रहे होंगे, तो उनको खोलते हुए चश्मे का पानी जो है वो पीने को दिया जाएगा, तो उसका उनको पिलाया जाएगा, वो पिएंगे नहीं, उनको पीने पर मजबूर किया जाएगा। वो चश्मा कैसा होगा, एनिया, हमजा नून या इसका मादा है, रूट है, और इसके मानी जो है एनिया के, इसके मानी भी जो है वो खोलता हुआ, यानी इतना गर्म के गर्मी की वजह से चश्मा जो है वो खोल रहा होगा, एनिया, जिसकी गर्मी अपने नुक्ते उरूज पर पहुंच गई होगी। और अब आप देख लें कि हालत चेहरों से खाशिया है, और जैसे कभी जैसे बहुत से बच्चे मेडिकल के लिए और लॉ के लिए यहाँ पे ट्राई करते हैं, और उसमें एंट्री बहुत मुश्किल है, और उन बच्चों से कभी बात हो या उनके पेरेंट्स से, ऐसे आमिला तो बहुत थके हारे, इतनी मेहनत के बाद जो है ना हम यहाँ पे एंटर नहीं हो सके, या और भी किसी भी शोबे में यहाँ पे एंटर होना और सारी जिंदगी, तो इंसान बहुत मायूस होता है कि आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। और अब यहाँ पे आप देख लें कि सारी जिंदगी दुनिया में जो है वो इंसान ने मेहनत की हो और फिर उसे कुछ ना मिले, तो मेरी प्यारी बहनों हमें बहुत इस बात से डरना चाहिए। ये नहीं कि अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशात, रस्म और रवाज, फलां ये कह रहे हैं, धमकां ये कह रहे हैं, देखें कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल क्या कहता है, कुरान हमें क्या कहता है। तो यहाँ पे हमने जो है दो अजाब का जिक्र पढ़ा, एक आग का दहकती हुई आग, दूसरा दहकता हुआ चश्मा, खूब गर्म पानी चश्मे का। अब तीसरे अजाब का जिक्र है, लैसा लहुम तुआमुन इल्ला मिन दरी, उनके लिए कोई खाना नहीं होगा, लैसा लहुम तुआमुन, कोई खाना नहीं है उनके लिए, इल्ला मिन दरी, सवाए जो है वो कांटेदार झाड़ी के। तो दरी जो है इसका रूट है द्वाद, रा और आयन, और ये एक खारदार जहरीली झाड़ी है जिसे कोई जानवर भी मुंह नहीं लगाता। आमतौर पर इंसान अच्छी चीज को खाता है, लेकिन जानवर ऐसे ही मुंह मारता मारता हर चीज में मुंह मारता है, लेकिन उसके जहर का जो असर है, उसकी जो बुरा उसका असरात हैं, तो उसकी वजह से जानवर जो होता है ना وہ بھی اس کے قریب نہیں آتا. تو یہ دری جو ہے وہ خاردار جھاڑی کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ دری جو ہے مدینہ میں ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے جس کی خباست کی وجہ سے جانور بھی اس کو نہیں اس کے پاس پھٹکتے, کیونکہ جب بھی اس کو وہ کھاتے ہیں تو مر جاتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دری دوزخ میں ایک چیز ہوگی جو کانٹوں سے مشابہ ہوگی. آپ نے ایلوا ایلوا یا ایلوا لفظ سنا ہوگا جی, ہاں ایلو ویرا سمجھ لیں, اس سے زیادہ کاڑی, ایلوے سے زیادہ کڑوی اور مردار سے زیادہ بدبودار اور آگ سے زیادہ وہ گرم ہے, وہ جو ہے نا یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. تو پھر اس کے بعد آیت جو ساتھ ہے نا, مزید یہ جو کھانا ہے اسی کی مزید تعریف کی جا رہی ہے, کیونکہ عام طور پر جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو ایک طاقت ملتی ہے, بھوک مٹتی ہے, ذرا سکون ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں نیند نہیں آتی, کیونکہ جو ہی کھانا کھاتے ہیں تو ساتھ ہی نیند آتی ہے, خوب غفلت کی نیند, خوب پیٹ. جو لوگ بہت یعنی بہت کھاتے ہیں تو بہت سوتے بھی ہیں. اور بعض بچے جب جیسے پڑھائی آپ نے زیادہ کرنی ہے, جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کبھی طالب علمی کا زمانہ تھا یا اب بھی آپ پڑھتے ہیں, تو کم کھاتا ہے انسان, کیونکہ کم کھانا جو ہے وہ آپ کے مقصد کو اچیو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. اگر زیادہ کھا لیں تو پھر جو ہے وہ کھانا نہیں ہمیں سنبھالتا, ہم کھانے کو سنبھالتے رہتے ہیں. جو کھا لیا بیٹھ نہیں سکتے, اب لیٹ نہیں سکتے, افطاری کے بعد بہت کھا لیا, مغرب کی نماز مشکل ہو گئی ہے, اور عشاء میں تراوی اور نماز میں کیوں نہیں آئے, اتنا پیٹ بھر گیا تھا, ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اور آنکھیں بند ہو رہی تھی, اور اس طرح کی بہت سی باتیں. حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوزخیوں کو اتنی زبردست بھوک لگا دی جائے گی جو اکیلی ہی اس عذاب کے برابر ہوگی, جو بھوک کے علاوہ ہوگا, لہٰذا وہ کھانے کی فریاد کریں گے. جیسے بعض لوگوں کو بھوک کی بیماری دنیا میں بھی ہوتی ہے, بہت بھوک لگتی ہے, تو وہاں پہ بھی ان کو یہ عذاب دیا جائے گا. اچھا, جب ان کو وہ جب کھانا مانگیں گے, اس کی فریاد کریں گے کہ ہمیں دیں, تو جب کھانا ان کو دیا جائے گا تو دری کا کھانا دیا جائے گا, دری, اور وہ کھا کر نہ ان کو کوئی بھوک ان کی مٹے گی اور نہ ہی انہیں جو ہے وہ موٹا کرے گی. پھر فرمایا, پہلے تو لا یسمنو ان کو موٹا نہیں کرے گی, ولا یغنی من جو اور نہ ہی ان کی بھوک مٹے گی. تو یہ ہے ان کا جو کھانا ان کو دیا جائے. اچھا, یہاں پر ایک بات اور جو ہے ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یعنی یہ اللہ کا عذاب ہے. اور میری ایک اسٹوڈنٹ تھی دنیا میں میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, اور ان کو جو ہے وہ فالج ہو گیا تھا اور بیمار ہو گئی تھی, اور ان کو جیسے دماغ کام نہیں کرتا تھا, جیسے کچا گوشت ہے تو وہ بھی وہ منہ میں ڈال لیتی تھی, اور جیسے یہ ہوتا ہے صابن دھونے کے لیے, کپڑے دھونے کے لیے ڈٹرجنٹ وغیرہ, وہ بھی وہ پی لیں گی, کچھ بھی جو بھی چیز ان کو نظر آتی تھی, کیونکہ ان کو کچھ سینس ہی نہیں تھا, اور وہ کھاتی چلی جاتی تھی. تو پورے گھر والوں نے نیچے سے سب کیبنٹ چیزیں سب خالی کی ہوئی تھی, ماں تھی, تو ایک کیا تھا امتحان تھا. تو اب یہاں پر جو ہے یہی بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے, اور یہ کیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. تو اس موقع پر پھر ہمارے لیے جو ہے وہ عمل کا اصول کیا نکلتا ہے. عمل کا اصول یہ نکلتا ہے, ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی موت کو, قیامت کو, آخرت کو یاد کریں اور اس کی پھر تیاری کریں, اور کبھی کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشی اس میں نہیں ہے, یا ان کے سنت یا طریقے کے مطابق نہیں ہے. ہمارا دل کتنا ہی کیوں نہ چاہتا ہو, ہمارے خاندان میں اس کا کتنا ہی رواج کیوں نہ ہو, بعض رواج چلے آتے ہیں جس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی, قرآن سنت میں اس کا کہیں کوئی ہمیں پروف نہیں ملتا. تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, ہمیں اٹھنا ہوگا, اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. اور جو جمہور مفسرین یا جمہور علماء کی جو رائے ہے اسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اچھا, اب آگے ہم دیکھتے ہیں, اب دوسرا گروپ جو ہے اس کا ذکر ہے, اور یہ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 16 تک ہے. فرمایا, وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا رادیہ, कुछ चेहरे उस रोज जो है वो बारौनक होंगे, नाइमा। और नाइमा जो है इसके मानी है खुशहाल, तरोताजा, शादमान, बड़े खुश होंगे, नाइम से है, नेमतों से है। अच्छा, जो लोग खुश होते हैं ना उनके चेहरे बड़े बारौनक होते हैं। बेटियां हैं, दोस्ते हैं, अब कुछ दिनों बाद मिलते हैं, कुछ लोग बड़े फ्रेश, तरोताजा, शादाब से होते हैं, और कुछ कुछ भी नहीं कहते लेकिन उनका चेहरा बोल रहा होता है। तो इनके चेहरे जो है वो नाइमा होंगे, बड़े बारौनक, बड़े शादाब, बड़े वो खुशो खुर्रम, शादमान होंगे। क्यों? लिसा ये हार रहा दिया, अपनी कारगुजारी पर खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया में जो कुछ भी किया था कुरान और सुन्नत के मुताबिक, जब आखिरत में उनके जो नताइज उन्होंने देखे तो नताइज देखकर वो खुश हो गए। उन्हें उन्हें पता चला कि दुनिया में ईमान, तकवा की जिंदगी और नफ्स की ख्वाहिशात को जो उन्होंने रोका था, तो और जो फराइज को अदा करने में तकलीफें बर्दाश्त की थी, अल्लाह के नाफरमानी के जो काम थे उसमें उससे बचने के लिए उन्होंने जो मुसीबतें बर्दाश्त की थी, तो वो कितने बड़े नफे का सौदा था, उसका कितना ज्यादा उनको यहाँ पे जो है वो अजर मिला है। तो प्यारी बहनों, ये है असल बात कि ए मेरी हम सफर, ए मेरी हम कदम, आओ हम तुम चले उस हसी राह पर, जिसके आखिर में है मेरे रब की रजा, जिसके आखिर में है तेरे रब की रजा। तो इसके लिए मुझे और आपको जो है ना उठना होगा, चलना होगा, मेहनत करनी होगी, तो तभी हम जो है इंशाल्लाह नाइमा में शामिल हो सकते हैं। और हम अपने फिर जो भी आप बच्चा पेपर देता है उसका रिजल्ट आता है तो बहुत खुश होता है, और बात कहते हैं हमने बहुत लिखा था, और रिजल्ट आता है तो उसमें फेल होता है, तो बहुत लिखने का क्या फायदा। जैसे हम लोग अब कहते हैं कि अब जैसे हर चीज में काउंटिंग है कि इतने हजार ये कर ले, इतने ये कर ले, उतने वो कर ले, अगर अल्लाह के नबी ने उस तरह से नहीं किया तो हमें भी अपनी जिंदगी को ऐसी चीजों से आजाद रखना चाहिए। फलां ने बता दिया है, फलां किताब में लिखा है, फलां ये कह रहा है इतने हजार दफा, तो अल्लाह के नबी ने नहीं किया, उनसे बढ़कर फिर मुत्तकी कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह को तादाद नहीं चाहिए, अल्लाह को क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। अय्युकुम अहसनु अमला तो है, और अय्युकुम अक्सरु अमला नहीं है, कि तुम्हें से ज्यादा अमल किसने किया, तो ये बात भी अहम है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब वो बहुत ही खुशो खुर्रम होंगे तो जन्नत जो मिलेगी, जन्नत की जो नेमतें क्या होंगी। सबसे पहली चीज जो है फी जन्नत आलिया, आली मकाम जन्नत में होंगे। अच्छा, अब आप देखेंगे यहाँ पे जन्नत इन आलिया जो है ये बड़ी अहम बात है, और कोई भी जो बाग है उसका हुसन, उसकी खूबसूरती, उसके फल जो है वो ये होते हैं, यानी उनका पता इससे चलता है कि बाग का मकाम क्या है, क्योंकि अरबों के यहाँ अच्छा बाग वो समझा जाता है जो बुलंदी पर हो, और जो बाग जितनी बुलंदी पर हो तो उसमें दो बातें खास होती हैं, एक तो वो जो मौसम के तगैयुरात हैं, पानी, सैलाब, उससे वो बचा रहता है, और दूसरा उसका फायदा ये होता है कि बहुत दिलकश मालूम होता है, बहुत खूबसूरत लगता है दूर से बुलंदी पर। तो यहाँ पे पहली खूबी जो बताई गई फी जन्नत इन आलिया, तो जो जन्नत यो बागात या जन्नत यानी रहने की जगह भी उसको हम समझें तो बुलंदी पर होगी, और नेमतों के एतबार से भी वो बहुत ही बुलंद होगा, जन्नत बुलंद होगी उनके लिए। फिर इसके बाद जो है वो दूसरी जो खूबी है बहुत ही अहम है, और ये हम खूबी सूरत नबा में भी पढ़ चुके हैं, जो जन्नत की सिफत के तौर पे जब हमने सूरत नबा को पढ़ा था वहां भी क्या है, ला तस्मउ फीहा लाग्विया, तो वहां पे वो कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे। और कुरान मजीद में ये वाली खूबी जन्नत की हमें सूरत मरियम में मिलती है, सूरत तूर में मिलती है, सूरत वाकया में मिलती है, और फिर सूरत नबा में भी मिलती है। और सूरत नबा में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, ला यस्मऊन फीहा लगवं वला किज़ाबा, आयत 35 में आपने पढ़ा था। अब तो ये जन्नत की बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि जन्नत ऐसी जगह है वहां कोई ऐसी चीज पेश नहीं आएगी जो कि नागवार हो, जो कि बुरी हो, किसी की गीबत नहीं होगी, चुगली नहीं होगी, आंखें कोई ऐसी चीज नहीं देखेंगी जिसका देखना नागवार हो, ना कानों में ऐसी कोई चीज पड़ेगी जो कि सुनना उसका अच्छा ना लगे, और ना ही कोई ऐसी बात जो है वो जबानों से आएगी, अपनी जबान से निकलेगी या दूसरों की जबानों से جو کہ لغ ہو جو کہ بری ہو. تو یہ جو جنت کی خوبی ہے وہ یہاں پہ جنت کی صفت جو ہے اس کو بتایا گیا ہے. اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں پہ ہم سوچتے ہیں ہم نے زبان کی حفاظت کرنی ہے, ہم نے کوئی غلط بات نہیں سننی, ہم نے کوئی آنکھوں سے غلط چیز نہیں دیکھنی, لیکن اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ نہیں کر رہے کوئی کر رہا ہے, آپ بھول کے اس کی بات سننے لگے. تو آپ نے سوچ لیا کہ آپ نے میوزک حرام ہے ہمیں نہیں سننی, لیکن ارد گرد میوزک لگی ہوئی, آپ کچھ اور بھی لینا چاہ رہے ہیں, کمپیوٹر پہ ساتھ ہی میوزک آن رہتی ہے ہر وقت, ہر چیز میں کہیں یعنی اس سے اس کو نکالنا, آپ سود سے بچنا چاہ رہے ہیں, ہے نا. تو گناہوں سے بچنا اس دنیا میں بہت مشکل ہو جاتا ہے, لیکن وہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. جیسے سورت واقعہ میں ہے, لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما سلاما. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے, یہ بہت خوبصورت اس کی خوبی ہے. پھر اس کے بعد تیسری جو اس کی صفت ہے, فیہا عین جاریہ, کہ اس میں چشمے جو ہیں وہ رواں ہوں گے, جاری ہوں گے. اس کے معنی کیا ہے کہ چشمے جو ہیں وہ جاری ہوں گے؟ تو چشمے جو ہیں عام طور پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں, لیکن بہتے ہوئے چشمے جو ہیں وہ بہت ہی ان کا حسن جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے. اور پیچھے آپ نے پڑھا کہ جنت باغات اونچے ہوں گے, تو چشمے جو ہیں وہ باغات کی سرسبزگی کے لیے, شادابی کے لیے چشمے بہت اہم ہیں. تو پہلے کہا کہ باغ جس میں ہوں گے وہ اونچائی پر ہے, اب فرما دیا کہ اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے. تو بہتی چیز میں کوئی بھی آ کے اپنے ہاتھ دھوئے, اس سے فائدہ حاصل کرے. اور آیت 13 میں فرمایا, فیہا سرر مرفوعہ, اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی. تو سرر سریر واحد ہے, اور یہ تخت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, چارپائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اچھی اونچی یہاں پہ مرفوعہ کا اس کی صفت ہے, تو اونچے بچھے ہوئے مسندیں ہوں گی, اونچے بچھے ہوئے تخت ہوں گے, یا اونچی اونچی جو ہے وہ چارپائیاں ہوں گی. تو یہ جو ہے اس کی خاص یہاں پہ اس کی صفت جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس میں آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس زمانے میں عربوں میں جو سلطانوں کے لیے بیٹھنے کی چیز بنائی جاتی تھی وہ بلندی پر ہوتی تھی دوسروں کی نسبت. اور آج بھی ہم کوئی بڑی محفل ہو, کوئی اچھی محفل ہو, تو ہم جو سپیکر ہوتا ہے, ٹیچر ہوتا ہے یا بزرگ ہوتے ہیں, ہم ان کو ایک اچھا اونچا مقام دیتے ہیں, وہ نمایاں ہوتے ہیں, پرومیننٹ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اسی بات کا ذکر ہے. آیت 14 کو دیکھیں, وہ اکواب مودوعہ, اور ساغر جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہوں گے. تو اکواب جو ہے یہ کوپ کی جمع ہے, اور مودوعہ جو ہے اس کے معنی ہے جیسے سامنے چنے ہوئے ہونا. مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے مدعو کے معنی ہے جیسے کسی چیز کو قرینے سے سجایا ہوا ہو, جیسے آپ کھانا لگاتے ہیں اور کھانے میں جب برتن آپ لگائیں اور اس کو قرینے سے سلیقے سے سجا دیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو یہاں پہ اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے لیے جو پیالے ہیں وہ سامنے چنے ہوئے ہوں گے, قرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے, ساغر بھرے ہوئے ہوں گے, اور ان کی حاجت کے مطابق ہوں گے, کمی بیشی نہیں, جتنا ان کو چاہیے تھا اتنا ہی ان کے اندر ہوگا. وہ اکواب مودوعہ, اور آیت 15 میں فرمایا, وہ نمارک مصفوفہ, اور گوتکیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوں گی. نمارک نمرقۃن اس کا واحد ہے, اور نمارک اس کی جمع ہے, اور یہ لفظ جو ہے یہ گوتکیے غلیچے وغیرہ جو ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ہر نشست میں قالین جو ہے ان کے ساتھ ہی بیٹھنے کے لیے کچھ رکھا ہوتا ہے جس پر آپ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں, کوئی جگہ جو ہے وہ خالی نہیں ہوتی. تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہے کہ قالینوں پر تکیے ہوں گے, گو تکیے ہوں گے, غلیچے ہوں گے. تو یہ جو ہے بڑی خوبصورت منظر کرشی کی گئی ہے. جیسے آپ بیٹی کو بیاتے ہیں تو اس کے گھر میں تو یہ بھی ہے یہ بھی ہے, ایک لڑکی کا رشتہ دیکھتے ہیں یا لڑکے کا, پھر آ کے بتاتے ہیں ویسے تھا ویسے تھا. اچھا وہ اس کا فرنیچر وہ تو چنوٹ کا فرنیچر ہے. ہمارے یہاں پنجاب میں چنوٹ کا فرنیچر بہت مشہور ہے, بہت خوبصورت ہوتا ہے, بہت مہنگا اور لیکن بہت خوبصورت. یہ جو ٹی وی ڈراموں میں فلموں میں چیزوں میں عام طور پہ یعنی جس کو دکھایا جاتا ہے, تو جیسے مطلب कोई कह रहा था कि वो तो फिल्मों में भी वो दिखाते हैं, मतलब उसको पेश करते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे जो बेस्ट चीजें हैं जन्नत की, उनका जिक्र किया जा रहा है, अल्लाह की नेमतों का। और फिर इसके बाद जो है वो आखिरी जो सिफ्त है वो है वजरा बीयू मबसूसा। वजरा बीयू ये भी जो है नफीस मसनत और मबसूसा, मबसूस जैसे फैली हुई चीज को कहते हैं, स्कैटर्ड को, बिछी हुई को कहते हैं, जैसे मबसूस आपने जी बासासा इसका जो है वो रूट है। तो इसके मानी ये हैं, अब देखें कि पहले अब तकियों का, गौ तकियों वगैरह का जिक्र हो चुका है, अब दोबारा जो है वो ये बताया जा रहा है कि कालीनों पर तकिए जो हैं, वो जो नफीस मसनदें बिछी हुई हैं, जो कालीन बिछे हुए हैं, तो उन पर तकिए, गौ तकिए हर तरफ बिखरे हुए होंगे कि बैठने वाला जहां बैठे तो उसकी सहूलत के मुताबिक। इसके लिए बड़ी खूबसूरत मिसाल है, आजकल सोफों पे बहुत सी वो जो कुशन और गद्दियां उसका बड़ा रवाज है, छोटे छोटे बड़े बड़े, बाज लोग तो उसे बहुत घबराते हैं कि वो इधर बच्चे ने फेंका है, उधर बच्चे ने फेंका है, जब तक बच्चे जब बड़े होते हैं तब तो मुश्किल नहीं, बहुत खूबसूरत लगता है, उसके बाद वो गार्बेज कचरा इधर उधर उधर। वो पिछले दिनों मेरे घर भी कोई तोहफा लेकर आया कि आपने इस्तेमाल करना है, कुछ हाथ से बने बड़े खूबसूरत छोटे छोटे वो कुशन, मैंने कहा इसको मुझे तो ये जो है वो ठीक है, तो अगर तुम मुझे इजाजत दे दो कि मैं किसी और को दे सकती हूँ फिर तो मैं आपका तोहफा रख लेती हूँ, मैं आपसे वादा कर लू, मतलब आप मुझे ये कह रही हो मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगी तो फिर आप किसी को और दे दें। तो आमतौर पे हमारे यहाँ भी ब्यूटी उसके लिए, खूबसूरती के लिए, हत्ता कि बिस्तरों के ऊपर भी वो जो आप वो लेते हैं क्विल्ट वगैरह, तो उसके साथ भी बहुत से वो निकलते हैं ना कुशन, और बड़े खूबसूरत होते हैं, अच्छे लगते हैं वैसे, लेकिन अगर सिर्फ उनको दिखाने के लिए डेकोरेट करके रखना, अगर जब इस्तेमाल आप करते हैं तो फिर आप नीचे फेंक देते हैं, फिर क्या करेंगे, यानी उनको रखें या आप इस्तेमाल करें। तो बहरहाल यहाँ पे ये एक तरफ हुसन, जरूरत, नफासत, खूबसूरती, हर चीज की मंजर कशी की गई है, तो ये है प्यारी जन्नत जो लोगों को मिलेगी। तो फी जन्नत इन आलिया जो है इसका जिक्र करके, तो पहली सिर्फ आलिया, दूसरी बेहुदा और लग बात नहीं सुनेंगे, तीसरी चश्मे बहरे होंगे, और आइन जो है यहाँ पे इस्म जेंस है, ये वाहिद भी इस्तेमाल होता है और फिर जमा के लिए भी होता है, फिर यानी और बहुत से चश्मे जैसे सूरत दहर में आपने पढ़ा सलसबील और जमहरीरा और फला, तो बहुत से चश्मों का जिक्र, तस्नीम आपने एक पीछे आज में पढ़ा था, तस्नीम युस्कौना मिन रहीकिन मख्तूम और इस तरह, तो यानी हर तरह के चश्मे यहाँ पे उनका जिक्र है, ये समझ लीजिएगा। तो चौथी सिर्फ जो है वो ऊंची मसनदें, पांचवी प्यालों का जिक्र है, छठा जो है वो तकियों का, गौ तकियों का जिक्र है, और सातवां दोबारा यही बात है कि नफीस फर्श पीछे में कालीन कह लें या जो कुछ भी। तो मेरी प्यारी बहनों ऑपोजिट क्या है, वजूह योम जिन खाशिया और दूसरी तरफ वजूह योम जिन नाइमा। अब मुझे और आपको ये फैसला करना है कि हम किस में शामिल होना चाहते हैं, खाशिया में या नाइमा में। दोनों की तरफ मंजरकशी करके रख दी गई है, और हम अगर नाइमा में जाना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी ख्वाहिशात की बजाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो है उनके तरीके पर हमें चलना होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना होगा। और आयत नंबर 17 से लेकर आयत नंबर 20 तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौहीद और आखरत के दलाइल दिए हैं, यानी बहुत ही खूबसूरत अंदाज है। अफला यनजुरून इलल इबली कैफ खुलिकत وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ। तो लोगों को क्या हो जाता है, लोग अल्लाह की बंदगी क्यों नहीं करते, लोग कयामत के दिन आने पर यकीन क्यों नहीं करते, लोग क्यों नहीं मानते कि आखिरत होगी, क्या उन्होंने कभी ऊंटों की तरफ नहीं देखा कि वो कैसे बनाए गए हैं, क्या आसमान को नहीं देखते कि कैसे उठाया गया है, कैसे बुलंदी पे उसको कायम किया गया है, और क्या वो पहाड़ों की तरफ नहीं देखते कि कैसे जमाए गए हैं, और वो जमीन को नहीं देखते कि वो कैसे बिछाई गई है। तो यहाँ पर चार दलाइल का खास तौर पर जो है वो जिक्र किया गया है, और एक ऊंट, दूसरा आसमान, तीसरे पहाड़ और चौथा जो है वो जमीन। मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जो जिन निशानियों की तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे दावत दी है, तो बद्दू लोग थे और खुले मैदान में रहते थे, आंख खोलते ही आसमान नजर आता, आंख खोलते ही आसमान नजर आता। तो कहा कि वो लोग जो हैं, यानी ऊंट उनके पास होते थे, आसमान नजर आता था, और अक्सर जमीन पर बिछोने वो बिछा के रहते थे। और ऊंट जो है, सबसे पहले ऊंट पर जिक्र किया अल्लाह ताला ने। क्यों ऊंट का जिक्र किया? कि सफर में हो या घर में हो, ऊंट उनके साथ रहते थे। और ऊंट कैसा, इतना अजीमुल जुस्सा जानवर, छोटा सा बच्चा भी उसकी महारत पकड़कर चल सकता था। और मुती, वफाशियार, जान निसार, और उसकी जो पानी की टैंकी है, जो पानी पीता है, तो 22 दिन बगैर पानी पिए के खाए के वो जिंदा रह सकता था। तो सहराई जिंदगी में ये अजीमुल जुस्सा तवीलुल कामत जानवर उनके बड़े काम आता था। एक तरफ उनका कहना मानता, दूसरी तरफ दिन रात का साथी होता, तीसरी तरफ जब जहां चाहे, जैसे बाकी जानवर को, घोड़ा या हर एक को, हर कोई नहीं उसको बच्चा नहीं लेके जा सकता, क्योंकि वो टांग मारता है तो क्या हो जाता है, यानी वो जो है सर्कश होते हैं। लेकिन ऊंट को छोटा बच्चा भी उसकी महार पकड़कर जो है जहां चाहे ले जा सकता है, सामान उनका उठाता था। और अगर सहरा में पानी खत्म हो जाए तो उसको पेट उसका काट, उसको जिबा करके फिर उसका पानी भी वो इस्तेमाल करते थे, उस वक्त जब कोई पानी सारे जो है वो खत्म हो गए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि वो रब जिसने ये ऊंट पैदा किया और जिससे तुम दिन रात फायदा हासिल करते हो, तो अल्लाह की ये नेमत तुम्हें इस बात पर मजबूर करती है कि तुम जो है वो क्या करो, कि तुम अल्लाह के मुती बन जाओ, अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह की अतात करो। फिर इसी तरह दूसरी, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आसमान की तरफ इशारा किया है क्योंकि ये बहुत नुमाया है, जैसे आमतौर पे छतों के साथ पिलर होते हैं, दीवारें होती हैं, ना कोई छत ना कोई पिलर, और अल्लाह ताला ने उसको जो है वो सदियों से जो है वो यहाँ पे दुनिया में कायम रखा है और उससे इंसान जो है वो फायदा हासिल करता है। तीसरी चीज पहाड़ है और कैसे अल्लाह ताला ने उनको जमा दिया है। और चौथी चीज जमीन, और हम पहले भी इन जो अजायब कुदरत है, हम पहले भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। तो वो रब जो ऐसी, जिसने ऐसी कुदरत पैदा की है कि ऊंट है, आसमान है, पहाड़ है, जमीन है, तो वो रब चाहे तो इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा कर सकता है। तो ये चारों दलाइल जो हैं, ये तौहीद और आखरत के दलाइल हैं, ताकि इंसान अल्लाह का मुती हो जाए, अल्लाह का फरमा बरदार बन जाए। ये जो बात है ना, कैफ खुलिकत कैफ रुफियत, बड़ा इसमें एक वजन है, बड़ा इसमें एक जोर है। मेरी प्यारी बहनों, ये जो इसके बाद आयत नंबर 21 है, इसमें जो दो आयतें हैं, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है कि आपकी हैसियत क्या है। फज़क्किर, तो आप एक तस्कीर करने वाले हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नसीहत कीजिए। इन्नमा अंत मुज़क्किर, बस नसीहत कीजिए, आप बस नसीहत ही करने वाले हैं। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन पर कुछ जबरदस्ती करने वाले नहीं हैं, आप इन पर कुछ जबर करने वाले नहीं हैं। तो ये जो बात है, ये बड़ी अहम बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि आप तो दावत दे रहे हैं, लोग आपको झुठला रहे हैं, आप मायूस ना हो, आपका काम सिर्फ नसीहत करना है। अगर वो मानना चाहें तो आसमान, जमीन और पहाड़ और ऊंट, ये दलाइल ही काफी है। अगर वो नहीं मानते तो फिर आपका काम लाठी लेकर, पुलिस मैन बनकर, हवालदार बनकर उनकी इसलाह करना नहीं है। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है, जैसे पीछे हमने सूरत आला में पढ़ा, सयज़क्कर मन यख्शा, वहां इसी बात को और अंदाज में कहा गया है, वयतजन्नबुहल अश्का, हम ये बात पढ़ चुके हैं। तो जो खास बात है वो ये है कि जैसे बाज़ुकात इंसान जो है वो तेजी में आ जाता है, या समझता है कि हम दीन के ठेकेदार हैं, सख्ती करके, जबरदस्ती करके, पुलिस मैन बनकर। पेरेंट्स और टीचर बाज़ों का बहुत सख्ती करते हैं, सजाएं देते हैं, मुर्गा बनाते हैं, पिटाई करते हैं, वो के यहाँ पे तो अब डरते हैं कि कॉल ना हो जाए। तो लेकिन असल बात क्या है कि इस्लाम का भी ये मिजाज नहीं है कि मार कुटाई करके जो है किसी की इस्लाह की जाए। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है आप किसको, जब आप नसीहत करेंगे तो फायदा जो है किसको होगा, जो नसीहत को कबूल करेगा। इल्ला मन तवल्ला व कफर, अलबत्ता जो शख्स जो है वो मुंह मोड़े यानी नसीहत को कबूल ना करे और इनकार करे, फिर होगा क्या, फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, फिर अल्लाह उसको बड़ा अजाब देगा, फिर अल्लाह उसको भारी अजाब देगा। और अल अज़ाबल अकबर से मुराद मुफस्सरीन कहते हैं जहन्नुम का अजाब है जो दुनिया के तमाम अजाबों से बड़ा होगा। इस दुनिया में कोई अजाब भी जो है उसमें इतनी शिद्दत नहीं है, इतनी सख्ती नहीं है, इतनी हौलनाकी नहीं है जितनी के जहन्नुम के अजाब में है। जैसे आग का भी अल्लाह ने जिक्र किया अन्नारल कुबरा, आप आगे जाके पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी यही बात जो है वो बताई जा रही है कि बड़ा ही सख्त अजाब जो है उन्हें मिलेगा। और आखिरी दो आयतें जो हैं ये बहुत ही डरावनी आयतें हैं, हमें गफलत की नींद से बेदार करती हैं और हमें बताती हैं कि होने क्या वाला है। इन्ना इलैना इयाबहुम थुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, फिर इन लोगों को पलटना हमारी ही तरफ है, फिर इनका हिसाब लेना हमारे ही जिम्मा है। तो मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है कि दुनिया में इंसान जो है वो कितना ही गाफिल क्यों ना रहे, कितनी ही मनमानियां क्यों ना करे, कितनी ही अल्लाह की नाफरमानियां क्यों ना करे, फरमाया कि फिर उनको पलट कर कहां जाना है, उन्हें हमारी ही तरफ आना है। तो आखिरी दो आयात जो हैं हमारी गफलत की जिंदगी पर पानी के छींटे डालती हैं और अल्लाह की तरफ से एक धमकी है कि ये मत समझ लेना कि तुम हमेशा दुनिया में रहोगे, ये मत समझ लेना कि हमेशा अपनी मनमानियां करते रहोगे। जैसे कभी कभी जहन में ये सवाल पैदा होता है कि फलां शख्स इतने गुनाह कर रहा है, इतनी गलतियां कर रहा है, फिर अल्लाह उनको पकड़ क्यों नहीं लेता। कभी जैसे आप फिलिस्तीन को ही इस वक्त हम देख लें कि फिलिस्तीन के जो हालात हैं, तो जैसे खून बह रहा है, जैसे औरतों के साथ सलूक किया जा रहा है, जैसे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, तो उस वक्त जहन में यह ख्याल होता है कि या किसी और को जुर्म करते देखते हैं और हमें पता होता है कि यह शख्स जालिम है, तो दिल में यह ख्याल आता है कि अल्लाह इनको पकड़ता क्यों नहीं है। तो यहाँ पे कहा कि इंसान कितना ही गुनाह क्यों ना कर ले, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो मेरी ही तरफ लौट कर आएगा और फिर मैं उसका जो है वो हिसाब लूंगा। और हिसाब जो लिया जाएगा, इस सिलसिले में हमें एक हदीस मिलती है जो बड़ी ही अहम हदीस है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि इब्ने आदम जो है वो अल्लाह के सामने खड़ा होगा हम, और उसके बाद जो है उनसे पूछा जाएगा कि उमर किन कामों में तुमने सरफ की, नंबर दो जवानी जो थी किन कामों में उसको पुराना किया, नंबर तीन माल किन तरीकों से हासिल किया, नंबर चार माल को किन राहों पे फिर खर्च किया, यानी जो कमाया तो हलाल था कि नहीं था, और जब खर्च किया तो फिर वो हलाल कामों पे किया या नहीं, और आखिरी बात जो इल्म हासिल किया तो उस पर कहां तक जो है वो अमल किया। तो मुहासबा अल्लाह तो करेगा, और इसी तरह जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज के क़यामत के दिन हजरत आदम का जो बेटा है, यानी पूरे इंसानों को कहा गया कि वो अपने पांव हिला नहीं सकता जब तक कि उनसे पांच चीजों के बारे में जो है वो पूछ ना ली जाए, जो भी मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, एक और खास बात जिस पर हमें जो है वो गौर करना चाहिए, तो ये आखिरी दो आयतें हमें फिर क्या पैगाम देती हैं कि हम अपना मुहासबा करें। हर रोज रात को सोते वक्त जो है हम अपना मुहासबा किया करें, अकेले बैठे हूं सोचा करें, और दो नमाजों के दरमियान जब भी नमाज के बाद हम बैठें तो भी अपना मुहासबा करें कि मेरे अंदर नकायस क्या हैं, मेरे अंदर कमजोरियां क्या हैं, और मेरी कौन सी चीजें हैं जो दूसरों को नुकसान देती हैं या मेरी नेकियां उससे खराब हो जाती हैं। और दूसरों को नहीं पता, हमें खुद जो है वो पता है कि हम कितने गुसीले हैं, शक्की मिजाज हैं, बदगुमान हैं, कुरान से सुन्नत से हम कितना हटे हुए हैं। दुनिया को नहीं पता, बल्कि किसको पता है, हमें पता है। और बाज़ुकात एक जुमला, हमारी जल्दबाजी हमें बहुत आगे और बहुत दूर कर देती है। हजरत हसनुल बन्ना शहीद अख़वानुल मुस्लिमून के ये रहनुमा थे और इनको शहीद कर दिया था। मिस्र मिस्र में थे, बहुत बहुत नेक और दीनदार थे। तो वो ये कहते थे कि तौबा इस्तग़फ़ार करते रहिए, बड़े बड़े गुनाह तो एक तरफ, छोटी छोटी गलतियों से भी बचिए, लेकिन सोने से पहले कुछ वक्त ऐसा रखिए जिसमें आप अपने नफ्स का मुहासबा कर सके कि आप में कौन सी बुराइयां और कौन कौन सी खूबियां हैं। वक्त की हिफाजत कीजिए क्योंकि वक्त ही असल जिंदगी है, और वक्त का एक लम्हा भी फजूल ना गुजारिए, और जो शक वाली चीजें हैं उनसे दूर रहिए, जो शक वाली चीजें हैं, और हराम के मुर्तकिब ना होइए, हराम के मुर्तकिब ना होइए। जैसे मैं तरावी पढ़ रही थी यहाँ पे रात में, तो एक आध दिन पहले की बात है, तो इमाम ने अनाउंस किया कि बच्चे जो हैं या कुछ यूथ के बच्चे या जो भी थे वो नमाज के दौरान टेक्स्टिंग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तिलका हुदूदुल्लाह फला तक्रबूहा, ये जो नमाज है, ये रोजा है, इबादतें है, अल्लाह के अहकाम है, ये अल्लाह की हदें हैं, इनके करीब मत जाओ। और हम एंड तक जाते हैं किसी भी चीज में। अब देखे नमाज के अंदर अगर टेक्स्ट कर रहे हैं तो फिर नमाज तो हुई ही नहीं, क्योंकि अल्लाह से थोड़ी बातें कर रहे हैं, अल्लाह से मनाजात और सरगोशियां थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बंदों से लगे हुए हैं, दिल तो उसी में अटका हुआ है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है वो अपना मुहासबा करें, और मुहासबा करने के लिए हमें पता होना चाहिए कबीरा गुनाह कौन से हैं, सगीरा गुनाह कौन से हैं, और हमें ये भी जो है वो पता होना चाहिए कि अगर मैं और आप जो है अपना मुहासबा नहीं करेंगे और फिर जब अल्लाह हमसे पूछेगा तो हमें क्या करना, फिर हमें क्या करना होगा, यानी फिर हमारे पास अमल का कोई टाइम नहीं होगा। हजरत अहनफ बिन कैस ताबईन में से थे, इनके बारे में आता है कि इनकी इबादत का खास वक्त रात का वक्त होता था, जब सब लोग मीठी नींद के मजे लेते थे, अपने रब के सामने खड़े होते, इजहारे बंदगी करते, अल्लाह से बातें करते, और उस वक्त अपने आमाल का जायजा लेते। वो चिराग जलाकर इसकी लौ पर उंगली रखते, अपने नफ्स से मुखातिब होकर कहते कि बता तुझको फलां फलां दिन फलां फलां काम करने पर किस चीज ने आमादा किया था, तूने क्यों फलां फलां जो है वो गुनाह किया था। तो मुहासबा करने वाले बड़ा सख्त मुहासबा करते हैं। और मेरी रूममेट थी एमए में पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो नींद बड़ी उसकी यानी सख्त और बुरी थी, यानी बहुत गहरी नींद उसकी थी। और मैं ओल्ड कैंपस जाती थी, उसकी न्यू कैंपस में क्लासेस होती थी, तो नेक थी वैसे तबीयतन, उर्दू स्पीकिंग थी, और बहुत मुझे अलार्म भी लगाना, फिर मुझे कहना अच्छा फजर में मुझे प्लीज प्लीज मुझे जगा देना, अच्छा अब मैंने अपनी नमाज पढ़नी है और उसको जगाना है, तो खूब जगा रही हूँ, तहजीब मुहजब जो भी तरीका हो सकता है, तो कोई असर नहीं है। फिर सुबह उठ के कहना तुमने मेरी चारपाई क्यों नहीं उलट दी, आपने मुझ में पानी क्यों नहीं डाल दिया, अच्छा और नीचे नाश्ते का टाइम होता था, अब मैं नाश्ता भी मैं अक्सर मैं अपना करके उसका ऊपर ले आती थी, क्योंकि उसको नाश्ता भी नहीं मिलता था, उसकी बस भी मिस हो जाती थी, तो मैं कहती थी तुम्हारा बनेगा क्या, यानी अक्सर अब भी वो अपने बच्चों को भी तारुफ करवाती है, अब तो शादियां हो गई बच्चों की भी, और मतलब हो रही है बच्चों की शादियां, और वो दिन याद करती है, तो फिर हम उसके कहने के मुताबिक उल्टा भी उसको करने की मैं कोशिश करती थी, लेकिन मैं सोचती थी कैसी इसकी मतलब वाकई ऐसी गहरी नींद है, तो बाकी वाकई शायद कुछ लोगों की ऐसी गहरी नींद होती है। अच्छा फिर वो क्या करती थी, नमाज कजा हो गई फजर की, फिर उसके बदले रोजा रखती थी, नफली रोजा रखती थी नमाज कजा होने पर एक ना, तो मैं कहती थी देखो तुम्हें मुश्किल नहीं लगता कि एक नमाज के लिए पूरा फिर तुम एक रोजा रखती हो, कहती मुझे अल्लाह से डर बहुत लगता है और पता नहीं मुझे नींद क्यों, मुझे होश क्यों नहीं आती, पानी बकायदा कहती थी मेरे ऊपर उंडेल देना। तो बहरहाल कुछ लोग जो है अगर उनसे कभी कोई गलती होती है, कोई कोताही होती है, तो अपने आप को बड़ी फिर सजा भी देते हैं अल्लाह के डर से और अल्लाह के खौफ से। तो बहरहाल आइए हम भी अपना मुहासबा करें, और मुहासबा करना बड़ी हिम्मत की बात है, बड़ी जुर्रत की बात है, करना चाहिए, और फिर मुहासबा करके अगर हमने लोगों का दिल दुखाया माफी मांग सकते हैं, उनको माफ कर सकते हैं, तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये थी सूरत अल गाशिया जो ईदैन की नमाज में पढ़ी जाती थी और जुमे के दिन भी रसूल अल्लाह पढ़ते थे, और देखें कि मजमून कितना सख्त है इसका जो शुरू का है सारा, और उस मौके पे इसका जो है इसकी जो है वो इसकी तिलावत बहुत अहम है। मेरी प्यारी बहनों, आइए हम आगे चलते हैं और आज अभी हम जो पढ़ेंगे ये सूरत अल फजर है। सूरत अल फजर जिसके लफ्जी मानी है फट जाना, फौ का फटना और फजर का होना, क्योंकि रोशनी जो होती है वो जैसे रात के अंधेरे को फाड़ कर जो है वो बाहर निकलती है। और जैसे इन फजारत का लफ्ज भी आता है फटने के लिए, चश्मे के फटने के लिए भी आता है। तो सूरत अल फजर एक रुकू है, इसका 30 आयात है, 30 आयात मक्की सूरत है। अल्फाज और कलेमात की तादाद 129 है और हरूफ जो है ये 597 यानी 597 है। इसका मेन टॉपिक आखरत की जजा और सजा का इस्बात है।